ओम शांति। हाल में बैठे हुए सब भाई बहने दो बार और ओम शांति करेंगे, खुशी से, मुस्कुरा करके, स्नेह से, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। प्रेम के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, परम प्रिया परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, पद्मा पद्म भाग्यशाली बच्चे, हम सभी प्यारे बाप दादा के घर में आनंद, खुशी, प्रेम, शांति की अनुभूति करने के लिए आए हैं। अभी आप गीत सुन रहे थे, प्रभु प्रेम के दो आंसू। मैं पूछना चाहती हूं कि बाबा की याद में कभी रोना आया? कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में पूछा था कि बच्चे बाबा की याद में कभी रोए, तो जो बाबा की याद में रोए वो हाथ खड़ा करे। बहुत अच्छा। क्यों रोए बाबा की याद में? क्यों रोए? क्योंकि हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। परम धाम से आकर के हम बच्चों का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं, और वो ज्ञान जिसको प्राप्त करने के लिए हमने द्वापर युग से लेकर के बहुत भक्ति की, तीर्थ यात्राएं की, दान पुण्य किए, और आखिर हमारी इच्छा पूरी हुई, हम बाबा के घर में आए और बाबा के ज्ञान को हमने अच्छी तरह से समझा, सुना और धारण किया। अब प्रश्न ये है कि हम सब पद्मा पद्म भाग्यशाली बाबा के बच्चे आनंद के सागर के आनंद की हम अनुभूति कर रहे हैं, कर रहे हैं? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। अगला प्रश्न है कि हम निरंतर आनंद की अनुभूति करते हैं या कभी कभी करते हैं? कभी कभी करते हैं या निरंतर करते हैं? तो हमें निरंतर आनंद की अनुभूति करनी है तो हमें निरंतर अभ्यास करना होगा। और कुछ बातें अपने अंदर धारण करनी होगी। आदरणीय जानकी दादी जी ने बहुत अच्छी बात कही, आप सबने सुनी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। अगर मुझे निरंतर आनंद की अनुभूति करनी है तो मुझे क्या करना होगा, ये हमें सोचने की बात है। दूसरी बात, अभी हमारी बहनों की मीटिंग हुई तो दादी जी ने तीन बातें बहुत अच्छी कही। दादी जी ने कहा, कल क्या हुआ मुझे याद नहीं, कल क्या हुआ मुझे याद नहीं, कल क्या होगा देखा जाएगा, कल क्या होगा देखा जाएगा, और मुझे सोचना है कि मुझे वर्तमान क्या करना है, मुझे क्या पुरुषार्थ करना है जिससे मैं प्यारे बाबा से सदा आनंद की अनुभूति कर सकूं। मुझे बात याद आती है, कहते एक बार कुएं ने सागर से पूछा, कुएं ने सागर से पूछा कि हे पिता, तुम नदियों नहरों को अपनी गोद में समा लेते हो और मुझे अलग थलग छोड़ देते हो। तुम नदियों नहरों को अपनी गोद में समा लेते हो और मुझे अलग थलग छोड़ देते हो। तो सागर ने कहा, असीम से मिलने के लिए असीम बनना पड़ता है। तुम अहंकार की दीवारों में जकड़े हुए हो, तुम अहंकार की दीवार को तोड़ दो। प्यासी धरती को सींचते हुए, खेतों को हरा भरा करते हुए समा जाओ मेरी गोद में, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी प्रकार प्यारे बाबा आनंद के सागर हैं, लेकिन आनंद के सागर के आनंद की अनुभूति करने के लिए हमें क्या करना होगा? बाबा हमारे से क्या चाहते हैं? बाबा की हम बच्चों के प्रति क्या आश है? अव्यक्त बाप दादा ने चार बातें बहुत अच्छी बताई हुई है। बाबा हमसे क्या चाहते हैं? पहली बात कि हम बच्चों के सूरत में बाप दादा की मूरत नजर आनी चाहिए। हम ऐसा पुरुषार्थ करें, हमारे मूरत से बाप दादा की सूरत नजर आए। दूसरी बात, हमारे नैनों में रूहानियत का नशा हो। तीसरी बात, हमारे चेहरे से सर्व प्राप्तियों की खुशी की झलक हो। चौथी बात, हमारी चलन में निश्चय का नशा हो कि हमें कौन मिला है। ऐसा साक्षात्कार मूरत हमें बनना है। उसके लिए बाबा कहते हैं, याद करो, सबसे पहले बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया तो दो शब्द कहे। कौन से? बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। क्योंकि बाबा जानता है कि मैं जिस दुनिया में आया हूं, मेरे बच्चे सतयुग से लेकर के जन्म लेते लेते कलयुग में आकर के पतित बन गए, विकारी बन गए हैं, दुखी अशांत हो गए हैं। मुझे अपने बच्चों को जाकर के फिर से पवित्र बना करके मुझे नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करनी है। अपने बच्चों को खुशी, आनंद, शांति की प्राप्ति करानी है। हालांकि सोचने की बात है कि बाबा जानता है कि मैं परम धाम से, निराकारी दुनिया से जब इस सृष्टि पर आकर के पवित्र बनो, योगी बनो का संदेश दूंगा तो संदेश सुनेंगे, पवित्र बनेंगे। बाबा जानी जाननहार है, बाबा त्रिकालदर्शी है, बाबा सर्वज्ञ है। बाबा ये जानता है कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं थे। मेरे बच्चे जब ये परम धाम में थे तो बिल्कुल पवित्र आत्माएं थी। और जिस सतयुगी दुनिया में मैंने भेजा था, मेरे बच्चे सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे, परंतु जन्म मरण के चक्कर में आते आते चार युग बीते और बच्चे पतित और विकारी बन गए। और बाबा ने आकर के इस कलयुगी पुरानी सृष्टि में सबसे पहले किसको पकड़ा, किसको पकड़ा, जो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, सबसे पवित्र आत्मा, उसी के 84वें जन्म में बाबा ने प्रवेश करके उसको स्मृति दिलाई कि तुम आज से 84 जन्म पहले पवित्र थे। और बाबा को भी स्मृति आ गई और बाबा को नशा चढ़ गया। क्या चढ़ा? मैं भविष्य में जाकर के छोटा मिचनू बनूंगा, नारायण बनूंगा, कृष्ण बनूंगा। और बाबा को जब निश्चय हुआ और जैसे जैसे शिव बाबा कहते गए, वैसे वैसे ब्रह्मा बाबा उनकी आज्ञा का पालन करते रहे और पवित्र बनो, योगी बनो का संदेश जब सब जगह पहुंचाया गया, तो आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा को इतना निश्चय था। उसके बाद जिन बच्चों को बाबा ने पवित्र बनो योगी बनो का संदेश दिया, वो अपने जीवन में उन्होंने पवित्रता को धारण किया और कितनी भी परीक्षाएं आई, कितनी भी समस्याएं आई, लेकिन उन समस्याओं का की परवाह ना करते हुए बाबा आगे बढ़े। और जो आगे बच्चों ने पवित्र बनो का संदेश अपने जीवन में धारण किया और उन्होंने अनेकानेक आत्माओं तक ये संदेश पहुंचाया, और कितनी आत्माओं ने बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया। मुझे याद है कि रमेश भाई जी ने बताया था कि जब हम फॉरेन में सेवा करने के लिए गए तो हमारे स्लोगन पुस्तके सब में लिखा हुआ था, पवित्र बनो योगी बनो। तो उसमें फॉरेनर्स ने कहा कि रमेश भाई, आप बहुत अच्छा कार्य करने के लिए आए हैं, पवित्र बनो योगी बनो का संदेश देने के लिए आए हैं यहां पर, लेकिन हम सोचते हैं कि पवित्र बनो योगी बनो का संदेश तो आप दे रहे, लेकिन अगर आप इतना ही इनके दिमाग में डाल दो, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, तो आप अपने मिशन में कामयाब हैं। तो रमेश भाई ने कहा कि हम तो परमपिता परमात्मा निराकार शिव, जो ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके पवित्र बनो योगी बनो का संदेश दे रहे हैं, हम तो वो संदेश अवश्य देंगे, कोई उसको फॉलो करे या ना करे। कितना निश्चय, और उसके फलस्वरूप आप सब देख रहे हैं कि वो संदेश जब वहां पर गया और आज हमारी फॉरेन में कितनी सेवा है, कितने सेंटर खुले, कितने बाबा के बच्चे बने, और बाबा के बच्चे आकर आगे कितनी आत्माओं को संदेश दे रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा कि फॉरेन से ही भारत के कुंभकर्ण जागेंगे, ऐसे बाबा के महावाक्य हैं। मुझे याद है कि यूनिवर्सल पीस हॉल में, आप सब जानते हैं, कि वहां पर म्यूजियम बना हुआ है, चित्र लगे हुए हैं। तो फॉरेनर की ड्यूटी थी गाइड के रूप में ज्ञान सुनाना। इंडियन लोग आए टूरिस्ट और फॉरेनर उनको ज्ञान सुना रहे हैं, और जो इंडियन ने ज्ञान सुना कि भगवान मुख्य तीन कार्य करते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना, विष्णु जी के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा महाविनाश का कार्य करते हैं, इसलिए उनको त्रिदेव कहते हैं, त्रिमूर्ति कहते हैं। जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी का चित्र दिखाया और वो इंडियन की आंखों में आंसू आ गए, उनको ये संकल्प चला कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का ज्ञान और ये क्रिश्चियन लोग हमारे को सुना रहे हैं। और मुझे याद है कि वो बाबा के बच्चे बने, उसके दिल में बात लगी और उसने अपने सेवा केंद्र में जाकर के खूब सेवाएं की। कहने का भाव ये है कि बाबा ने आकर के जो हमें पवित्र बनो, योगी बनो का संदेश दिया, हम भी बेधड़क होकर के और निश्चय बुद्धि होकर के एक लक्ष्य लेकर के जब हम चलती हैं तो आत्माएं सुनती हैं। और उन आत्माओं को पुरानी 5000 वर्ष पहले वाली स्मृति जिनको आत्माओं को आ जाती है, वो बाबा के ज्ञान में चल पड़ती है। उसी में देखो कि मैं बहुत छोटी उम्र में ज्ञान में आई, ऐसा कहें कि पूर्व जन्म के संस्कार थे। हमारी लौकिक माता जी हमें लेकर के गई और दादियों का इतना अच्छा जीवन, वाइब्रेशन योग के तपस्वी जीवन। और मुझे याद है कि चंद्रमणि दादी जी ने तीसरे दिन मुझे पूछा कि प्रेम तुझे योग करना आता है, दृष्टि लेनी आती है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। दीदी कहती अच्छा बैठ, मैं तुझे दृष्टि देती हूं, तुम मेरी आत्मा की तरफ देखना। और लाल लाइट हुई, दीदी मेरे सामने बैठी है और उस समय हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दो गीत चले थे, सब योग में फिल्मी गीत ही चलते थे, लेकिन उस समय दो गीत निकले थे, वसुधा के सांचल में, स्वर्गीक भारत भूतल में, शिव स्वागत आज तुम्हारा। और दूसरा गीत था हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। दीदी दृष्टि दे रही है और ये गीत चल रहा है, लाल लाइट है, दीदी दिखाई नहीं दी, लाइट ही लाइट दिखाई दी। और वो जो दृष्टि दीदी ने दी, इतनी आनंद की अनुभूति हुई, आत्मा को इतनी खुशी हुई और उस दृष्टि से सृष्टि बदल गई। आज 52 ईयर हुए, निश्चय हो गया कि पाना था सो पा लिया, यही हमारा असली घर है, हमें और कोई घर बनाना नहीं है। कहने का भाव ये है कि बाबा कहते कि ये निश्चय करो कि हम बाबा के थे, बाबा के हैं और बाबा के रहेंगे। एक लक्ष्य कि जो बाबा ने मुझे कहा कि पवित्र बनो, योगी बनो, उस लक्ष्य को मुझे अंदर उतारना है, स्मृति में हमेशा लाना है, क्योंकि लक्ष्य से ही लक्षण आते हैं। आप सब जानते हैं कि सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की और कहां गई? रावण की शोकवाटिका में गई। इसी प्रकार बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि द्वापर युग से लेकर के हम अपने आप को भूल गए, हम अपवित्र बन गए। अब बाबा ने हमें एक लक्ष्य दिया कि बच्चे तुम्हें पवित्रता को धारण करना है, तुम्हें पवित्र बनना है और योगी बनना है। और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण हमारे में आती है। आप सभी बाबा से मिलन मनाने के लिए आए और आपने पहले ही लक्ष्य रखा कि हमको बाबा को मिलने के लिए जाना है, उसी प्रकार से आपने टिकट बुक कराई, पवित्रता धारण की, खान पान का परहेज किया, रोजाना क्लास की और बाबा से मिलन मनाने के लिए आ गए। जब हमारा लक्ष्य मजबूत होता है तो लक्षण भी हमारे में आ जाते हैं। मुझे याद आता है कि एक बार टीचर ने क्लास में बच्चों को होमवर्क दिया कि सब बच्चे बड़े होकर के क्या बनेंगे, अपना अपना लक्ष्य लिख करके लाओ। तो उसमें सबने लिखा, किसी ने लिखा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने लिखा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने लिखा मैं बिजनेसमैन बनूंगा। लेकिन उसमें एक बच्चा था, उसने अपने में लिखा कि मैं बड़ा होकर के बहुत बड़ा अस्तबल खरीदूंगा, 200 घोड़े रखूंगा और बहुत बड़ी कोठी बनाऊंगा और 4 कारें रखूंगा, एक मेरी बीबी की और 2 मेरे बच्चों की। अब वो लक्ष्य दूसरे दिन होमवर्क जब टीचर ने पढ़ा तो टीचर ने उस स्टूडेंट को अपने पास बुलाया। उसने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो उसने कहा कि मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में सर्विस करते हैं। तो उसने कहा कि बेटा ऐसा है कि तुम्हारे पिता तो एक फैक्ट्री में मामूली सर्विस करते हैं और तुमने इतनी बातें इसमें लिख दी, तो तुम सोच समझ लो। और टीचर ने दूसरे दिन फिर होमवर्क दिया सब बच्चों को कि आप फिर से अपने जीवन का लक्ष्य क्या है वो लिख करके लाओ। तो उसने दूसरे दिन भी यही लिखा कि मैं बहुत बड़ा अस्तबल बनाऊंगा, 200 घोड़े खरीदूंगा और एक जो है महल बनाऊंगा, कोठी बनाऊंगा और 4 कारें रखूंगा, एक मेरी बीवी की, 2 बच्चों की। अब क्या हुआ कि जब टीचर ने दूसरे दिन भी ये पढ़ा तो टीचर को बड़ी हैरानगी हुई और उसको गुस्सा भी आया कि देखो ये क्या कर रहा है, ये ऐसे लक्ष्य को प्राप्त तो कर नहीं सकता है। तो टीचर ने उसको स्कूल से निकाल दिया, ये कुछ नहीं बन सकता। अब क्या हुआ, काफी वर्षों के बाद टीचर सैर कर रहा था और स्टूडेंट कार में जा रहा था और स्टूडेंट ने अपनी टीचर को पहचाना, कार से उतरा और अपनी टीचर को प्रणाम किया और बताया कि मैं आपका वही स्टूडेंट हूं जो कुछ वर्ष पहले आपने मुझे स्कूल से निकाला था, तो आप आए क्योंकि गुरु है, आप आए मेरे घर में चले। तो टीचर ने कहा ठीक है, गाड़ी में बैठा और टीचर जो था उसको, स्टूडेंट जो था वो टीचर को अपने घर में लेकर के गया। उसने सारी कोठी दिखाई, वहां 4 कारें भी खड़ी थी, फिर उसको अस्तबल में ले गया, वो भी देखा, उसमें घोड़े भी खड़े थे। तो फिर टीचर ने पूछा कि ये आपने कैसे इतनी कामयाबी अपने जीवन में पाई? तो उस स्टूडेंट ने कहा कि जब आपने मुझे स्कूल से निकाल दिया तो मैं राजा के अस्तबल में नौकरी की, तो उसमें घोड़ों की रेस हुई, उसमें पहले मेरा पांचवा नंबर आया, फिर मेरा चौथा नंबर आया, फिर तीसरा नंबर आया, फिर दूसरा नंबर आया, फिर मैं फर्स्ट आ गया। और जब मैं फर्स्ट आया तो टीचर ने मेरे को मैनेजर बना दिया अस्तबल का, और मुझे पगार अच्छी मिलनी शुरू हुई। मैंने दो घोड़े खरीदे, उससे चार खरीदे, उससे दस खरीदे, ऐसे धीरे धीरे बेचता गया, खरीदता गया, और मेरा बिजनेस आगे बढ़ता गया। और आज जो कुछ भी है मेरी मेहनत का फल, वो आपके सामने है। तो टीचर ने उसको बहुत अच्छी बात बताई। उसने कहा कि ऐसा हुआ कि जब मैंने दूसरे दिन आपको कहा था कि आप अपना लक्ष्य लिख करके लाओ, तो एक तुम थे जो अपने लक्ष्य पे अटल रहे, तुमने अपना लक्ष्य नहीं बदला। और जो स्टूडेंट थे उन सब ने अपना अपना लक्ष्य बदल दिया, किसी ने कुछ लिख दिया जो एक दिन पहले लिखा था, दूसरे दिन कुछ लिख दिया। तो तुम्हारी कामयाबी का राज ये है कि तुम अपने लक्ष्य को नहीं बदले, इसलिए तुम इतनी तरक्की की। तो कहने का भाव ये है कि बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, जो मैंने आपको लक्ष्य दिया है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, और उनके गुणों को देखो, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण में क्या विशेषताएं थी, वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और आज हम इस क्लास में पूछें कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, सीताराम बनेंगे या लक्ष्मी नारायण बनेंगे, क्या पसंद करती है माताएं, क्या पसंद करती हैं, हाँ लक्ष्मी बनेंगी, और भाई क्या बनेंगे, नारायण बनेंगे। इसलिए जब हमारा लक्ष्य है, हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, तो बाबा जो हमें कहते हैं, बाबा ने मुरली में कहा था कि बाबा आकर के तीन बातें स्थापन करते हैं, धर्म, राज्य और कुल। धर्म, राज्य और कुल, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाबा आकर के करते हैं, और दैवी राज्य, अटल अखंड निर्विघ्न राज्य की स्थापना करते हैं, और ईश्वरीय कुल संगम युग में और सतयुग में दैवी कुल होगा। तो जब बाबा धर्म स्थापन करते हैं, बाबा ने कहा ना कि तीन धर्म खड़े हैं, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन, एक धर्म प्रायः लोप है, जिसका बाबा मुरली में मिसाल भी देते हैं, बड़ के वृक्ष का, कि बच्चे बड़ के वृक्ष के बारे में आप जानते हो ना, उसका थुर नहीं है, वो मीलों मील फैला हुआ है, कलकत्ता में लोग स्पेशल उसको देखने के लिए जाते हैं, फाउंडेशन नहीं है, परंतु वो उसमें से जड़े निकल करके फिर जमीन में गई, फिर निकला, फिर और धर्म निकले, तो ऐसे जड़े आगे आगे वृक्ष फैलता चला गया। इसी प्रकार बाबा कहती है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप है, और मैं आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। तो धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता की आवश्यकता है, और जो बाबा अटल अखंड निर्विघ्न राज्य की स्थापना करते हैं सतयुगी, उसके लिए मर्यादाओं की आवश्यकता है, अनुशासन की आवश्यकता है। और तीसरी बात, बाबा जो ईश्वरीय कुल स्थापन करती हैं, दैवी कुल स्थापन करती हैं, उसके लिए क्या चाहिए, परिवार में क्या चाहिए, उसके लिए प्यार चाहिए। तो बाबा आकर के जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करती हैं, उसके लिए पवित्रता चाहिए, और पवित्रता के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है जिसके लिए हमने भक्ति की, दान पुण्य किए, तीर्थ यात्राएं की, खूब तपस्याएं की, और लास्ट में जाकर के क्या ज्ञान मिला? तुम आत्मा हो। कहते जहां भक्ति पूरी होती है वहां ज्ञान शुरू होता है। तो बाबा ने आकर के पवित्र और योगी बनने के लिए हमारे को आत्म ज्ञान की अनुभूति कराई। सबसे पहले जब आप बाबा के घर में आए तो बहनों ने आपको परिचय दिया कि आप कौन हैं? आप एक आत्मा हैं, जिसकी हमको सदियों से इच्छा थी, और जो भी इस धरती पर अन्न खाता है उसकी ये एक संकल्प होता है कि मैं कौन, मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना है और मुझे क्या करना है। बाबा ने आकर के हमारे सब क्वेश्चन का समाधान दिया कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम दे नहीं, तुम दे ही हो। कहते स्वामी विवेकानंद जब सबसे पहले अपने गुरुजी के आश्रम में गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन? और उन्होंने कहा, यही तो मैं जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन। और बाबा ने जब बाबा के घर में आए तो सबसे पहले क्या परिचय मिला? मैं कौन, मैं दे नहीं, मैं दे ही हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा इस भ्रुक्ति के बीच में निवास करती हूं। ये शरीर मेरी कुटिया है, भ्रुक्ति रूपी आसन पर विराजमान हूं। ये सृष्टि एक कांटों का जंगल है, और ये शरीर कुटिया है, और मैं भ्रुक्ति रूपी आसन पर विराजमान तपस्वी मूरत आत्मा हूं, और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। आज दिन तक हमने क्या समझा? मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, मैं आपके चरणों की धूल हूं। लेकिन बाबा ने क्या कहा? नहीं, तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम पवित्र थे, तुम शांत स्वरूप थे, तुम सुख स्वरूप थे, तुम आनंद स्वरूप थे, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में आने के कारण अभी तुम पतित बने, अब फिर से तुझे पावन बनना है। तो जिसको बाबा ने अभ्यास कराया, जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, आत्मा का ज्ञान इतना पक्का किया कि चलते फिरते उठते बैठते बाबा आत्मा राधा, घर के जितने भाती थे उन सब का राधा आत्मा, जसोदा आत्मा, नारायण आत्मा, जो भी बच्चे थे सबको बाबा ने आत्म स्मृति दिलाई। और दूसरा, बाबा ने जो 14 वर्ष भट्ठी कराई उसमें भी बाबा ने क्या कहा? बाबा बच्चों को पक्का कराते थे, बच्चे शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है, अरे बच्चे किचन में भी लिखो शिव बाबा याद है, वॉशरूम में भी लिखो शिव बाबा याद है। देह का भान ना रहे, हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं, ऐसा बाबा ने अभ्यास कराया। और मुझे याद है मनोहर दादी जी ने बताया था कि 14 वर्ष भट्टी में रहने के बाद दादी जी को जब बाबा ने लौकिक में मित्र संबंधियों के पास भेजा तो बाबा ने दादी को ये पक्का कराया कि बच्ची देखना, जब तुम अपने संबंधियों के पास जाएगी और वो मोह में आएंगे और तेरे को भाकी पहनेंगे रोएंगे कि तू इतनी देर के बाद आई, लेकिन बच्चे तुम उनको याद दिलाना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। ऐसा ही दादी जी बताती हैं कि जब बाबा ने मुझे लौकिक संबंधियों के पास भेजा और मैं गई, तो सीढ़ी चढ़ के जब ऊपर गई तो मेरी सबसे पहले माँ आई। माँ ने कहा, अरे मनोहर, इतना चिल्लाई और रोई क्योंकि देर के बाद मिलन हुआ था माँ बेटी का, तो ऐसे भागे भागे जब आकर के भाकी पहनने लगी तो मनोहर दादी ने कहा, ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और फिर दादी वहां पर स्टूल पर बैठी और बाबा ने कहा था, बच्ची तुम जाएगी तो मुंह में नहीं फंसना, खाना खुद अपने हाथ से बनाकर खिलाना। तो दादी ने फिर शिव बाबा की याद में खाना बनाया, उनको खिलाया, उनको आत्मा का परिचय दिया, आत्म अनुभूति कराई और वो सारा परिवार फिर से ज्ञान में चला। ऐसे बहुत सी हमारी दादियों के अनुभव हैं। हम दादियों से अक्सर जब मिलते थे तो दादियां बहुत अनुभव सुनाती थी। मेरे को याद है कि हम जब पार्टी लेके आते थे फरीदकोट से, तो ट्रेनिंग क्लास है जहां पर, वहां पर ध्यानी दादी जी होते थे। लौकिक में वो मम्मा के मौसी जी थे, तो दादी से हम मिलाने के लिए अपनी पार्टी को लेकर के जाते थे। तो दादी अक्सर पार्टी को ज्ञान रत्नों से बहुत अच्छा रिफ्रेश करती थी। और दादी हमेशा सुनाया करती थी, मैं आपको सुनाती हूँ, दादी सात बातें सुनाती थी, सात दिन का रहस्य सुनाती थी और ऐसा भाव विभोर होकर के सुनाती थी कि बच्चों में निश्चय होता था। दादी सुनाती थी, मैं आपको सुनाती हूँ, दादी सुनाती थी, देखो सबसे पहली बार ऐतवार, सोमवार, मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सात दिन का रहस्य। दादी कहती, देखो पहले ऐतवार से शुरू करो, संडे, ऐतवार बोलते ना, ऐतवार से शुरू करो। सबसे पहली बात, शिव बाबा पर ऐतवार करो, ऐतवार निश्चय करो, ऐतवार करो कि शिव बाबा इस धरती पर आकर के हमको पवित्र और योगी बना करके नई सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, और जो बाबा कहती हैं हमें बाबा की आज्ञा का पालन करना है। दूसरी बात, सोमवार जब हम बच्चे बाबा पर निश्चय रखते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं, निश्चय रखते हैं, तो सोमवार फिर हमारी आत्मा तैयार हो जाती है सोम रस पीने के लिए, जो बाबा मुरली चलाते हैं। इसको बाबा कहते हैं ये अमर कथा है, तीजरी की कथा है, सत्यनारायण की कथा है, सोम रस। फिर बाबा कहते हैं जो सोम रस पीता है, फिर आता है मंगलवार। मंगलवार क्या होता है? मंगल मिलन होता है शिव बाबा से, मंगलवार मंगल मिलन होता है। फिर आता है बुधवार, बुधवार जब हमारा भगवान से मिलन होता है तो बुद्धि पवित्र हो जाती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। फिर आता है सतगुरुवार, जब हमारी आत्मा पवित्र बन जाती है, बुद्धि पवित्र हो जाती है, तो बृहस्पति की दशा सबसे श्रेष्ठ दशा मानी जाती है, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती है जिससे हमारी सर्व मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फिर आता है शुक्रवार, जब बाबा हमें सोमरस पिलाती हैं, मंगल मिलन बनाती हैं, बुद्धि श्रेष्ठ होती है और बृहस्पति की दशा बैठती है, तो फिर दिल से अपने आप दिल क्या कहता है, शुक्रिया बाबा है? बाबा तुम्हारा शुक्रिया, हम क्या थे तुमने हमें क्या बना दिया और अब तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, जो कहोगे वो करके दिखाएंगे। और उसके बाद हम बाबा का शुक्रिया करते हैं, फिर क्या आता है शनिवार, फिर शनि की दशा भाग जाती है। इसलिए बाबा की आज्ञा का पालन करना है तो क्या करना है, देह भान से न्यारे हो जाना है। फर्स्ट एंड लास्ट लेसन यही है, मैं कौन, मैं आत्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। जब हम देह भान से परे हों तो बाबा के प्यार की आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। दूसरी बात, पहली बात देह भान से परे, दूसरा बाबा की आज्ञा है देह अभिमान से परे। पहले देह भान से परे, मैं देह नहीं मैं विदेही आत्मा हूं। दूसरी बात देह अभिमान से परे, देह अभिमान कब आता है, उसकी क्या निशानी है, मेरी बात को अभी मान लिया जाए, उसको कहते हैं देह अभिमान। मुझे याद है कि एक बार अदर कुमार कुमारियों की भट्टी थी और दादी ने अदर कुमारों से हाथ खड़ा कराया था कि किस किस की युगल ज्ञान में नहीं चलती है वो हाथ खड़ा करे, किस किस की युगल ज्ञान में नहीं चलती है। आप में से कर सकते हैं कोई, जिसकी युगल ज्ञान में नहीं चलती, तो उस समय करे अच्छी तरह से करे, किसकी युगल ज्ञान में नहीं चलती है वो हाथ खड़ा करे। तो दादी बहुत प्यार से मुस्कुराए और दादी ने कहा कि क्या कारण है, क्या कारण है कि युगल ज्ञान में नहीं चलती। जरूर हम जब ज्ञान में चलते हैं थोड़ा घर में जाकर के फोर्स भी करते होंगे कि देखो मैं ज्ञान में जाता हूं तो तू भी चल, वो नहीं चाहती और हम जबरदस्ती करते हैं। और वो जो युगल है, पत्नी है, वो क्या देखना चाहती है, वो ज्ञान नहीं सुनना चाहती, वो प्रैक्टिकल जीवन देखना चाहती है। और जब हमारा घर में प्रैक्टिकल जीवन होगा वही ज्ञान में चलेगी। फिर दादी ने दूसरा प्रश्न किया था कि क्रोध किस किस को आता है, घर में गुस्सा कौन कौन करती है। तो बहुतों ने हाथ खड़ा किया। दादी कहती है अच्छा एक बात बताओ कि जिसको कभी क्रोध ही नहीं आया जीवन में वो हाथ खड़ा करे, उसको मैं गिफ्ट दूंगी। अब कौन करे, बहुतों ने हाथ खड़ा कर दिया कि हमें कभी क्रोध नहीं आया। दादी कहती ऐसे नहीं मानूंगी, पहले उसकी धर्म पत्नी हां करे कि हां ये क्रोध नहीं करता, पहले उसकी युगल सर्टिफिकेट दे कि हां ये क्रोध नहीं करता, दूसरी बात उसकी ब्राह्मणी बताए कि हां ये क्रोध नहीं करता। तो मैं आपको सुनाती हूं कि उस समय हमारे पास फरीदकोट से पार्टी आई थी और उस पार्टी में एक हमारे पास भाई आते, बिल्कुल सच्ची उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। तो फिर उसकी लौकिक पत्नी ने भी बताया कि हाँ ये कभी क्रोध नहीं करते और फिर हमने भी बताया, फिर दादी ने गिफ्ट दिया। तो दादी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि देखो वो अपने मित्र संबंधी घर बार सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पीछे लगी है। अब तुम अगर क्रोध करोगे, गुस्सा करोगे, तो वो कहेगी तो कुछ नहीं, परंतु वो आश्रम में तुम्हारे चलने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो ये सोचती है अंदर में कि ये यहां जा रही है, अभिमान तो इसने छोड़ा नहीं, अहंकार तो वैसे ही है, क्रोध भी वैसे ही है, तो मैं क्यों जाऊं, वहां पर क्या सीख के आती हो। तो इसलिए बाबा मुरली में क्या कहती हैं, बाबा कहते चैरिटी बिगन्स एट होम, पहले घर वालों को ज्ञान सुनाओ, और वो घर वाले ज्ञान कम सुनेंगे, तुम्हारी धारणा ज्यादा देखेंगे। वैसे भी बाबा कहते अगर हम योग करते हैं, अगर हम स्व स्थिति बनाते हैं, बाबा की धारणाओं को लेकर के अपने घर में चलती हैं और मुख से ज्ञान नहीं सुनाते, कहते कि मौन में रहने से, वाइब्रेशन देने से, आत्मिक स्थिति से, योग से आपके घर वालों पर प्रभाव 95% पड़ेगा। और अगर योग नहीं है, धारणा नहीं है, और आप ज्ञान सुनाते जा रही हैं, तो वो क्या कहेगी, क्या कहेगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो बाबा कहते हैं कि बच्चे धारणा मूर्त बनो, स्व स्थिति में रहो। बाबा ने भी पहले अपने परिवार को आत्म स्वरूप में स्थित कराया, उनका त्याग हुआ, तपस्या हुई, ब्रिजेंद्रा दादी जी, निर्मल शांता दादी जी, फिर उसके बाद कितने लोग आने लगे आत्मज्ञान सुनने के लिए। ऐसे ही हमें भी घर गृहस्थ में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, बाबा की रोज मुरली सुनते हुए, रोज हम जाकर के मुरली की एक अच्छी सी पॉइंट सुनाएं, हम अपनी घर में दिनचर्या अच्छी रखें, और फिर दूसरी बात कि जो माताएं भोजन बनाती हैं वो भी बाबा की याद में बनाएं। और कई बार माताएं गुस्से में होती हैं, भोजन बनाती हैं, और वो बेचारा पति खाता है तो जरूर है कि उसको भी गुस्सा आएगा। तो इसलिए माताओं पर बहुत जिम्मेवारी है, बाबा ने कलश ही माताओं पर रखा हुआ है, और माताएं जो है प्रथम गुरु माँ है। तो जितने भी घर में हमारे रहने वाले सदस्य हैं, जिसको बाबा कहते गृहस्थ आश्रम, जब हम ज्ञान में आते हैं, दुनिया में तो आश्रम अलग है, गृहस्थ अलग है, लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बन गए तो गृहस्थ आश्रम कहलाया। आश्रम में पवित्रता होती है, आज गृहस्थ में पवित्रता नहीं रही। और पवित्रता भी किस बात की, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, धन की भी पवित्रता, तन की भी पवित्रता। बाबा कहते हम सब स्टूडेंट हैं। एक बार मैं पार्टी लेकर के आई मधुबन में, सुबह को पार्टी ट्रेन पहुंची, और जब सुबह ट्रेन पहुंची तो हमने कहा भाई जी आप स्नान वगैरह करके साफ सुथरे कपड़े पहन कर आइए, बाबा के रूम में जाएंगे। वो कहता बहन जी आपने तो कहा कि देह को देखना ही नहीं है, तो फिर आप देह अभिमान में क्यों आते हो, ये स्नान वगैरह करना या साफ सुथरे का ये देह को देखने की निशानी है। तो कहने का भाव है हम गॉडली स्टूडेंट हैं, और आलस के भरे हुए कपड़े हम जब वो पहन के योग में बैठेंगे तो योग लगेगा। अब हम सब अपने आलस को छोड़ के बाबा की याद में चारों तरफ से बुद्धि योग निकाल करके 3 मिनट बाबा की याद में।
सतयुग में तुमको आना है, शिव पिता को अब याद करो।
घर गृहस्थ में रहते हुए हमें बाबा की आज्ञा का पालन करना है। बाबा कहते, क्या मेरे सर्व संबंध बाबा से है कि देह और देहधारियों से लगाव है, ये अंदर में चेक करो। मेरे दिल रूपी दर्पण पर बाबा बैठा है या कोई और बैठा है, कौन बैठा है चेक करो। हमारे घर में कोई साधु संत महात्मा पवित्र आत्मा आ जाती है, उसके लिए बैठने के लिए हम बहुत सुंदर आसन बनाते हैं, और उस आसन पर कोई भूल से भी बैठ जाए तो हम क्या कहते हैं, क्या कहती है, या नहीं बैठना, या महाराज जी आकर के बैठेंगे। तो क्या हमारे दिल रूपी दर्पण पर बाबा बैठा है या कोई और बैठा है? हमने भक्ति मार्ग में गाया तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो आज दुख घनेरे क्यों हैं? हम परेशान क्यों हैं? अशांत क्यों हैं? हम यहां से कहते हैं, यहां से बाबा मेरा बच्चा है, बाबा मेरा पिता है, बाबा मेरा पति है। क्या प्रैक्टिकल में मैंने बाबा से सर्व संबंध जोड़े हैं? ये अपने दिल से पूछो। जैसे जैसे हमारा देहधारियों से लगाव निकलता जाएगा, बाबा से सर्व संबंध जुड़ते जाएंगे, दोनों बातें ओतप्रोत है। हम बाबा से सर्व संबंध जोड़ेंगे तो अपने आप ही हम सब की सेवा कर सकेंगे, नहीं तो घर गृहस्थ में रहते हुए अटैचमेंट होती है, लगाव होता है, फिर परेशानी आती है। बाबा कहता है मैं तुम्हारा माता, जिस भी संबंध की आपको अपने अंदर मन में धारण करो कि मुझे बाबा से कौन सा संबंध जोड़ना है, बाबा उसी संबंध में आता है, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, पति के रूप में, बच्चे के रूप में, बाबा वैसे वैसे आकर के अपने बच्चों की बात सुनता है और उसको सहयोग देता है। दूसरी बात, जब हम घर में रहते हैं तो घर को आश्रम कैसे समझेंगे, घर के जितने भी सदस्य हैं ये सब बाबा के बच्चे हैं। हम क्या समझते हैं, मेरे बच्चे हैं। हमने दादियों को देखा न्यारा और प्यारा बनते। मैं मधुबन में एक बार पार्टी लेकर के आई और चंद्रमणि दादी के साथ उनकी रियल सिस्टर टिक्कन दादी बैंगलोर में रहते थे, वो दोनों इंद्रप्रस्थ में बैठे हुए थे। तो मैंने पार्टी को परिचय दिया टिकन दादी का और दीदी का, चंद्रमणि दादी का, कि आप दोनों रियल सिस्टर हैं, आप दोनों रियल सिस्टर हैं। तो देखिए दादियों की दैवी भाषा। दादी ने उसी समय मेरी बात को ब्रेक दिया। दादी कहती नहीं, ऐसे नहीं, जैसे ये मेरी दैवी बहन वैसे ये मेरी दैवी बहन, दैवी बहन है ऐसे कहना। तो मैं बहुत उस बात को समझा कि दीदी ने मुझे कितना बड़ा शिक्षा दी। और जब परिचय भी देते हैं लौकिक दुनिया में भी तो क्या कहती हैं, ये मेरा लौकिक जीवन साथी है, जो ज्ञान में चलते हैं पति पत्नी, ये मेरा लौकिक जीवन साथी है। और अगर लगाव होगा तो कहेंगे ये मेरी घरवाली है, ये मेरी पत्नी है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें देह अभिमान, देह से लगाव की, अटैचमेंट की आई, लेकिन नहीं, ये मेरे लौकिक पति है, ये मेरा लौकिक बच्चा है, ये मेरा लौकिक जीवन साथी है। बाबा ने इस प्रकार से हमारे को दैवी भाषा, ताकि हम मन में जो संकल्प करें ये बाबा के बच्चे हैं, और भाषा में भी हम एक दूसरे के सर्विस साथी हैं। और जब कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो सब ये फील करते हैं कि वाकई इनका जो जीवन है कमल पुष्प के समान है। कमल पुष्प के समान जीवन किसका गायन है, घर गृहस्थ में रहते हुए, सब कार्य करते हुए कमल पुष्प के समान हम न्यारा और प्यारा रहे। तो हमें क्या करना है, बाबा को विश्वास दिलाना है प्रैक्टिकल लाइफ से कि बाबा हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे रहेंगे। कहते ज्ञान, प्रेम, संपत्ति और विश्वास चारों आपस में बिछड़ रहे थे। मेरी बात समझ आई, ज्ञान, प्रेम, संपत्ति और विश्वास चारों आपस में बिछड़ रहे थे। तो उन्होंने आपस में सोचा कि हम एक दूसरे से पूछ ले, अगर हमारा मिलने को दिल हो तो हम कहां मिले। तो ज्ञान कहता है कि मैं महान आत्माओं, पवित्र आत्माओं की वाणी में वास करूंगा। और प्रेम कहता है कि मैं मां के हृदय में वास करूंगा। और संपत्ति कहती है कि मैं मार्केट में वास करूंगी। और विश्वास कहता है एक बार मैं चला जाता हूं फिर मैं वापस नहीं आता। विश्वास कहता है कि मैं एक बार चला जाता हूं फिर वापस नहीं आता। इसलिए हमें क्या करना है, हमें इतनी धारणा मूर्त बनना है, घर गृहस्थ में रहते हुए सब कार्य करते हुए लक्ष्य को इतना मजबूत करना है कि बाबा भी, हम जैसे हैं बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरे मीठे बच्चे हो, सिकी लदे बच्चे हो, नूरे रतन हो, और हम बाबा की जो मीठी लोरी है उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको छोटी सी बात करके अपनी वाणी को विराम देती हूं। कहती है कि शैतान के मन में संकल्प चला कि मैं सन्यास धारण करूं, शैतान के मन में संकल्प चला कि मैं सन्यास धारण करूं, तो उसने अपनी दुकान का सारा माल बेच दिया। तो उसको एक कहता है कि तू सारी दुकान का माल बेच रहा है, अगर तेरा सन्यास से दिल उब गया तो फिर तू आके क्या करेगा। कहता मेरी बात सुन, मैंने उसका प्रबंध कर लिया है। वो कहता क्या। कहता मैंने अपनी दुकान का सारा माल बेच दिया, उसकी दुकान में क्या था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध निंदा चुगली सब था। कहता सब बेच दिया, एक मैंने रख लिया। वो कहता वो कौन सा। कहता वो आलस्य। अगर कहता मेरा सन्यास से मन उब गया तो ये जो आलस है होगा तो ये सारे इसके पीछे आ जाएंगे। तो इसलिए बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे आलस नहीं करना। बाबा ने दिनचर्या दी है बहुत अच्छी, अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो, जो वरदान है वो अमृत वेले बाबा से हमें लेनी है। फिर बाबा कहते हैं मुरली क्लास है, मुरली क्लास में आओ और बाबा के महावाक्य सुनो। बाबा कहते हैं याद रखना कि जब आप पुरुषार्थ करोगे तो माया आपके साथ रहेगी, लेकिन इसका ध्यान देना, जब आप सुबह अमृत वेले क्लास करोगे तो माया आलस के रूप में आएगी, जब आप मुरली क्लास सुनोगे तो संग दोष में आएगी कि देखो फलाना ऐसा ये ऐसा, ये क्लास में लेट आया, ये इतने साल से ज्ञान में है, इसने अभी तक क्रोध नहीं किया, ये ऐसी है तो हमारी क्या बात है, हम तो अभी नए हैं, थोड़ा बहुत हमें भी आ गया तो क्या बड़ी बात है। तो ये समझिए माया का सूक्ष्म रूप है। फिर तीसरी बात, जब बहन हड्डी सेवा कहती है हड्डी सेवा करो, तो फिर हम देखते हैं कि बहन जी ने काम तो कह दिया ये काम करना, पर देखो मुझे कोई देख रहा है, अगर देख रहा है तो मेरा उमंग उत्साह खूब है, अगर कोई नहीं देख रहा है तो चलो जैसे तैसे है वो कर लो। तो जब हम हड्डी सेवा करते हैं तो उसमें माया देह अभिमान के रूप में आती है। फिर जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान में मान शान की इच्छा हो जाती है कि मैंने ज्ञान सुनाया, इसको मैंने ज्ञान में चलाया, ये भी एक माया का रूप होता है। बाबा कहते हैं तुमने क्या सुनाया, अगर मैंने ये आपने ये समझा मैंने इसको ज्ञान में चलाया, बाबा कहता है ये अमानत में ख्यानत हो गई, ज्ञान मेरा मैंने तुझे दिया औरों को देने के लिए। आपको कोई चीज देता है कि उसको फलाने को दे दो तो आपको मैंने दी नहीं, बाबा ने मुझे दिया, बाबा ने मेरे द्वारा सेवा कराई और मैंने आगे दिया। तो इस प्रकार से जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो उसमें मान शान की इच्छा हो जाती है, जब हम योग करते हैं तो उसमें कई प्रकार की जब माया आती है व्यर्थ संकल्प चलती है। एक बार बाबा से एक बच्चे ने पूछा कि बाबा जब योग में बैठता हूं तो व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, तो बाबा ने कहा अरे बच्चे तुमने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी, किसी के ऊपर किसी के बच्चे की शादी हो मान लो, या आपने बहुत बड़ा महल बनाना तो आप कहेंगे कि मैं बहुत व्यस्त हूं ये काम पूरा करके फिर करूंगा। तो बाबा कहते बच्चे तूने विश्व परिवर्तन का कार्य पूरा कर लिया। दूसरी बात जो बाबा कहते हैं कि 63 जन्मों के विकर्मों को योग बल से आपको भस्म करना है और 21 जन्मों का खजाना आपने जमा करना है, तो क्या इतना योग कमा लिया। किसी के ऊपर बहुत कर्ज चढ़ा हुआ हो और पहले वो उतारेगा उसके बाद जमा करेगा, तो 63 जन्मों के विकर्मों का खाता हमें भस्म करना है, 21 जन्मों के लिए जमा करना है, तो क्या कर लिया। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे जब तुम अपने कार्य में व्यस्त रहोगे तो तुम्हें कभी भी आलस नहीं आएगा। एक के बाद एक बाबा ने मुझे खूब पुरुषार्थ कहा करने के लिए। कहते कि एक आलसी व्यक्ति था, लास्ट में बात पूरी करती हूँ, एक आलसी व्यक्ति था, कितना नुकसान करता है आलस। वो कहता मेरे तो सारे कार्य भगवान ही करता है। और दूसरा कहता वो कैसे, कहता मेरे को लकड़ी की जरूरत थी घर में, जोर से तूफान आया, सारे वृक्ष उखड़ गए और मुझे लकड़ी प्राप्त हो गई। फिर कहता मेरे घर में बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया और जोर से तूफान आया, सारा कूड़ा उठा करके ले गया। अब कहता मैंने आलू बीजे हैं और भूकंप के इंतजार में हूं। तो कहने का भाव ये है कि आलस लास्ट में, हम सारा पुरुषार्थ करें लेकिन बाबा ने कहा आज का काम कल पर मत छोड़ो। लास्ट में फिर से दादी जी की बात याद कराती हूं कि दादी जी कहती हैं कल क्या हुआ मुझे याद नहीं, कल क्या होगा वो देखा जाएगा, परंतु मुझे आज क्या करना है, मुझे बाबा की आज्ञा का पालन करना है। बाबा जो कहता है, बाबा की सारी बातों को अपने अंदर धारण करके ज्ञान स्वरूप बन करके आनंद की अनुभूति करनी है, और ऐसी करनी है कि मेरा चेहरा और चलन ऐसा दिव्यता हो उसमें कि साक्षात्कार मूर्त बने और बाबा की आश पूर्ण करे। ओम शांति, ओम शांति।